نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مصیبتوں سے کیسے نمٹا جائے, آج اس سلسلے کا دوسرا ٹاپک ہم شروع کریں گے. پہلا ٹاپک کیا تھا کہ مصیبتوں کے آنے کے اسباب کیا ہیں, یہ بھی بہت اہم تھا کیونکہ جب ہم سبب نہیں جانتے تو علاج کہاں کریں گے. لیکن آج کا ٹاپک اس پچھلے ٹاپک کو آپ کہہ لیجئے کہ گہرائی میں جا کے پڑھنے والی چیز ہے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے ہی کچھ کام ایسے ہم کر لیں کہ مصیبت آئی نہ. میں اس کی چھوٹی سی مثال پھر دے دیتی ہوں آپ کو عام زندگی سے. ایک ہے وہ ماں جو کہتی ہے کہ اب سردی آ رہی ہے تو یقیناً میرے بچے کو ٹھنڈ لگے گی, پھر ٹھنڈ لگے گی تو زکام ہوگا, پھر زکام ہوگا تو پھر اس کو نزلہ ہوگا, پھر بخار بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے زکام کی اور بخار کی اور نمونیے کی کچھ دوائیاں دے دے, میں اپنے گھر میں رکھ لوں تاکہ جو ہی میرا بچہ بیمار ہو میں اس کو دوا دے دوں. ایک ماں تو یہی ہے نا, وہ ہر طرح کے اسباب جمع کر کے رکھے گی, گاڑی پاس رکھے گی کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی بچے کو ڈاکٹر پہ لے جانا پڑے. لیکن ایک دوسری ماں ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دوائیوں میں کیوں ڈالوں, میں کیوں نہ اپنے بچے کو اس سردی کے اثر سے ہی بچا لوں. تو وہ پہلے سے کچھ پریکاشنس لے لے, کچھ پیش بندیاں کر لے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے بچے کو کورڈ رکھے, اچھے کپڑے پہنائے, بہت گرم سرد میں نہ رکھے, یعنی جو بھی وہ پیش بندی کر سکتی ہے. تو کیا فائدہ ہوگا اس کا کہ بچہ بیمار ہی نہیں ہوگا. جب بچہ بیمار نہیں ہوگا تو نہ ماں کو وہ بچے کی تکلیف سہنی پڑے گی, نہ سارے اس کے جو بھی بیماری کے یعنی جو اثرات گھر میں ہوں گے وہ ہوں گے. تو عقل مند کون سی ماں ہے؟ وہ ماں ہے نا جو کہ بچے کا پہلے سے انتظام کرے گی. تو یاد رکھیے, یہ آج کا ٹاپک ہماری پوری سوسائٹی کے لیے گائیڈ لائن ہے. میں آج رستے میں بھی سوچ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس موضوع کو نہ سننا خود کو مصیبتوں میں ڈالنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کس مصیبت میں ڈل سکتے تھے یا ڈلنے والے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا معاملہ کیا اور ہمارے لیے اس کے سننے کا اہتمام کر دیا. تو آئیے دیکھیں گے کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے کے کیا کام ہیں. اور اس کو پڑھتے وقت آپ کو انتہائی شدت سے احساس ہوگا کہ اچھا تو اس کی وجہ یہ تھی, اچھا وہ جو پریشانی آئی اس کے پیچھے وہ تھا. تو لہٰذا ایسے موضوع کو سنتے وقت جو سب سے خوبصورت طریقہ ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو دیکھیں, لک ایٹ یور سیلف. نہ اپنی ہمسائی کو یاد کریے گا, نہ بہن کو, نہ اپنی کسی دوست کو, کیونکہ ہمارا حال کیا ہے جب یہ موضوعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں پتہ چل گیا اس کے شوہر اسی لیے بیمار ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی پہ بڑی نافرمانیاں کی تھی نا, وہ ان کی چوری اس لیے ہوئی تھی کہ وہ بہت دکھاوا کرتے ہیں نا. تو ان کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں گے, فائدہ تو تبھی ہے. دوسروں کو ہم نے بتا بھی دیا اگر تو اسے فرق تو نہیں پڑے گا. تو مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے کے کام, کتاب میں سے اگر آپ دیکھیں تو پیج 59 پہ اس کی لسٹ ہے. اگر گو تھرو کرنا چاہیں, پہلی چیز ہے شکر کرنا. آج اس کی بہت ڈیپتھ ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے کہ ہم نے صرف نام ہی سنے ہوئے ہیں. سچی جو بات ہے, بس نام سنے ہوئے, ہم نے چکھا نہیں ہے ان جذبوں کو. تو حقیقی شکر کیا ہوتا ہے, یہ آج کے ہماری نشست کا پہلا مین ٹاپک ہوگا. پھر دوسری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے کلی اجتناب کرنا, ادھوری فرما برداری نہیں بلکہ پوری کی پوری فرما برداری کرنا, نافرمانی سے رکنا, یہ کہہ لیجئے. یہ بھی آج کا دوسرا ٹاپک ہوگا, بہت اہم ہے یہ بھی. تیسرا یہ ہے کہ دنیاوی سزاؤں کا موجب بننے والے اعمال سے گریز کرتے رہنا, یعنی ہم قرآن اور سنت میں سے وہ اعمال دیکھیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا وعدہ کیا ہے, تو ان سب چیزوں سے انشاءاللہ بچنا ہے. پھر گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا, یعنی استغفار کہنا, دل کی گہرائی سے شرمندہ ہونا, یہ بھی مصیبتوں کو ہم سے دور کرتا ہے. پھر پانچواں ہے نیکی کے میسر آنے والے مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا. یہ تو بہت سارے لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہماری نگاہ دوسروں کے عیب چننے میں اور گناہوں کو پکڑنے میں بہت تیز ہے, بغیر گلاسز کے پکڑ لیتے ہیں, لیکن نیکیوں کے مواقع ہمارے ارد گرد اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ریت کے ذرے ہیں, لیکن صرف ہم اپنی کچھ لاپرواہیوں اور کچھ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کہ ہم تو پہلے ہی بڑے نیک ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو بھی دیکھیں گے. پھر چھٹی چیز ہے تنگی میں قرب الہی پانے کے لیے آسودگی میں نیکیاں کرنا, یعنی جب ہم اچھے حالات میں ہیں, صحت ہے تو نیکیاں کیجیے, ताकि बीमारी में नेकी का अजर मिले। अमीरी है, अल्लाह ने एक आसूदा हाल किया, खूब भाग के नेकियां कीजिए ताकि अगर कल कुछ फकर आ भी गया, कुछ गुर्बत आ भी गई, तो अल्लाह ताला हमारे फिर वो मौके जो हैं उसमें कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसी तरह आने वाले मसाइब से बचाने वाले अस्कार का अहतमाम करना। अलग से छोटी बुक में भी मौजूद हैं, जो सिस्टर्स अपने पढ़ने के लिए अलग से लेना चाहें वो ले सकती हैं अपने लिए, ताकि फिर हर वक्त मोटी किताब में से तो नहीं पढ़ा जाता। और पूरी बुक में बिखरी हुई चीज़ें हैं तो वो इस छोटी सी बुक के अंदर दुआओं की सूरत में मौजूद हैं। बहरहाल उसको भी आप पढ़ेंगे, और अगर आपने ये याद कर ली इस कोर्स के दौरान, तो आपको क्या पता कि आपने अपने लिए कितनी मुसीबतों को रोक लिया। और मैं बस वह सोचती हूँ कि हम नेकी के कामों से रुकते ही किसी मुसीबत के आने पर है ना, मुसीबत कह लीजिए, नामवाफिक हालात कह लीजिए, हालांकि उसका उस आने में और उन दुआओं के सीखने में और उन इल्म की बातों को जानने में ही हमारा इलाज होता है। बहरहाल करेंगे आज इस पे जितनी बात अल्लाह ने चाहा हमारे नसीब में हुई। फिर इसके बाद देखिए कि दुआ करते रहना, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें मुसीबतों से बचा ले। फिर सुख और चैन के ज़माने में बहुत ज़्यादा दुआएं करना। और 10वीं चीज़ है सदका और खैरात करना। कहने की बात है तो 10 चीज़ें, लेकिन अगर आप किताब के हिसाब से चलेंगे ना तो तकरीबन 150 सफ़ों पे ये सारे असबाब फैले हुए हैं। इससे आप देख लीजिए सबसे लंबा टॉपिक ही ये है इस बुक का। और मैं भी जहाँ जिस नतीजे पे पहुँची वो यही है कि आज हम इतने परेशान क्यों हैं। कभी मैं सोचती हूँ लोग आज इतना बीमार क्यों होते हैं, खुराक तो हम इतनी असली खाते हैं। ख़ास तौर पर आप देखिए कि वेस्ट में रहने वाले हम मुस्लिम, हमें तो फिज़ा भी अच्छी मिलती है, हमें तो कोई डस्ट एलर्जी भी नहीं होनी चाहिए, और आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन भी नहीं है, सिक्योरिटी भी है, जो कुछ भी एक लाइफस्टाइल के अंदर एक आसूदगी वाली चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या यहाँ सब बड़े खुश हैं? सारे हॉस्पिटल बंद हो गए कि बीमारी कोई नहीं होता? इसके बरक्स आप देखिए मदीना की गलियाँ, वहाँ एक शख्स आ गया बाहर से, कहने लगा यहाँ कोई हकीम नहीं है, क्यों ना मैं दुकान खोल लूँ, बहुत चलेगी। कहा ठीक है, एक दिन बैठा, दो दिन, चार दिन, कोई मरीज ही नहीं आ रहा। एक शख्स को पूछने लगा कि क्या तुम लोग बीमार नहीं होते? कहने लगा नहीं, हम तो नहीं होते। कहा क्यों नहीं होते? अब आप अपने ऊपर लेके सोचे ज़रा, कौन सा दिन है जो घर में एक खातून किसी अपॉइंटमेंट पे ना निकले? जहाँ से मैं आई हूँ मैंने तुम्हारा यही देखा है, जहाँ का मुझे नहीं पता। आज बेटे का अपॉइंटमेंट, आज बेटी का अपॉइंटमेंट, आज अपना है। मैंने कहा आप सारे इतने बीमार क्यों रहते हैं? नहीं, वो रेगुलर चेकअप है, आज दांत का चेकअप है, आज कान का है, आज नाक का है, और आज वो ईयरली अपना चेकअप है, आज फिजियोथेरेपी पे जाना है, आज साइकाट्रिस्ट पे जाना है। भाई आपको क्या हो गया? मुझे तो आप पे रहम आ रहा है, आप इतनी बीमार रहती हैं। नहीं नहीं इतने बीमार नहीं है, बस रेगुलर है, लेकिन छुट्टियों पे छुट्टियाँ और ज़िंदगी की एक मशगूलियत है। मुझे लगता है कि शैतान ने आज हमें खुद के ऊपर ही गौर व फिक्र में इतना डाल दिया कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें दूसरी चीज़ों की तरफ पलटना है। तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अब एक एक करके हम इस सारी लिस्ट को कवर करेंगे। जिस तरह भी अल्लाह ताला हमसे ये काम लेगा, सबसे पहली चीज़ है शुक्र करते रहना। आप देखिए शुक्र क्या होता है, आइए थोड़ा सा किताब के साथ साथ चलते हैं। इतनी खूबसूरत तारीफें हैं शुक्र की कि अगर हमें ये तारीफें समझ आ गई ना, तो आप देखिएगा कि हमारा शुक्र का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। बुक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लोगों की किताब ना सुना दूँ। बहन क्या हाल है? शुक्र है वो जेड़े हाल च रखे, जो कर ले। अच्छा, वो एक शुक्र है में ना 100 शिकवे होते हैं, 100 शिकायतें होती हैं। याद रखिए ये शुक्र नहीं है। किसी ने मैसेज में अपनी बात छोड़ी और उन्होंने कहा मैंने अब नमाज भी छोड़ दी है, मैं अल्लाह से खफा हूँ। नऊज़ु बिल्ला, ये देखिए शैतान की मायूसी है। ये बातें आपके मुंह से भी निकल सकती हैं जब आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी परेशानी में आए। तो शुक्र की असल क्या है? नेमतें अता करने वाले रब करीम का शुक्र अदा करते रहना बंदे को गज़ब इलाही से बचाता और इनके अजाब से महफूज करता है। इमाम इब्ने कय्यम ने जो तारीफ़ लिखी ना, इसको हाईलाइट कर ले, अरबी में पढ़ ले मेरे साथ। कभी भी इंशाल्लाह आपको ये याद हो गई तो आप महसूस करेंगे कि दिन रात आप इसके साथ अपना अकीदा पुख्ता करते जाएंगे। और वो क्या है, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा, अशुक्रु हारिसुन नेमती मिन कुल्ली मा यकूनु सबबल लिज़वालिहा। तर्जुमा देखिएगा, शुक्र नेमत के जवाल के हर सबब के मुकाबले में इसकी चौकीदारी करता है। तो आज से शुक्र का एक नया नाम रख लें, हारिस। हारिस क्या है? देखिए हा अलिफ रा सीन है इधर ना, हारिस कहते हैं सिक्योरिटी मैन को, चौकीदार को। हर सा का लफ्ज़ भी कुरान में आता है, और सा कर दें हारिस सा तो क्या बनेगा? किसान। सिर्फ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क बता रही हूँ, सा और सीन से मानी का बदल गया। तो आज शुक्र की एक तारीफ रख लें, कोड वर्ड बना लें अपने पास, शुक्र क्या है? चौकीदार है। किस चीज़ की चौकीदारी करता है? नेमतों के जवाल की चौकीदारी करता है। यानी शुक्र करके एक इंसान अपनी नेमतों को चोरी होने से, गुम होने से और बिगड़ने से बचा लेता है। इसी तरह इमाम कहते हैं कि बंदा किसी भी चीज़ के साथ अल्लाह ताला की अता करदा नेमत की ऐसी हिफाजत नहीं करता जैसी कि शुक्र के साथ करता है। वो किसी भी चीज़ के साथ नेमतों को इतना बर्बादी का निशाना नहीं बनाता जिस कदर के उसके साथ अल्लाह की नाफरमानी के काम करके बनाता है। यही नेमत की नाकदरी है, ये इनाम फरमाने वाले अल्लाह के कुफर का दरवाज़ा है। बात समझ गए? हमारा हक क्या है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करें और उसकी नाफरमानी से रुक जाएं। एक बंदा अल्लाह की दी हुई नेमतों को पाकर अल्लाह का शुक्रगुजार बन के नेमतों को महफूज कर लेता है। अभी आगे एक और हम तारीफ भी पढ़ेंगे, कैयदो, कैद कर लो अपनी नेमतों को शुक्र के साथ। तो हर नाफरमानी इंसान के लिए ना शुक्री का दरवाज़ा खोलती है। अब सवाल पैदा होता है कि शुक्र करें कैसे? अल्लाह शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ये तो एक लिप सर्विस है, ये तो हमने बचपन से एक तरीका देखा है शुक्र का। शुक्र के तीन दर्जे होते हैं। शुक्र से मुराद जुबान का शुक्र, शुक्र बिल लिसान। फिर दूसरा दर्जा होता है शुक्र बिल कल्ब, और तीसरा होता है शुक्र बिल जवारे। इन्हीं तीनों को आगे हम देखेंगे। शुक्र से मुराद क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। शुक्र से मुराद क्या है? हाफिज इब्ने रजब की एक तारीफ इन्होंने बयान की है, अशुक्रु अल्ला युस्तआन बिशैइन, अल्ला युस्तआन बिशैइन मिन अन्निअमी अला मासियतिन। आप अरबी में हाईलाइट करना चाहें अरबी में कर लें, उर्दू में करना चाहें तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। शुक्र ये है कि नेमतों में से किसी भी चीज से नाफरमानी में मदद ना ली जाए। चलिए कोई एक मिसाल लीजिए, कोई एक नेमत, गाड़ी नेमत है ना, गाड़ी का शुक्र क्या है कि उस गाड़ी पर बैठकर किसी नाफरमानी के काम पे ना निकला जाए। और हैरत होती है उस वक्त जब लोग जहाजों में बैठे गंदी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि तकादु समावातु वलर्दु, करीब है कि गिर पड़े आसमानों जमीन, ना पाऊँ जमीन पे ना आसमान पे, और फिजाओं में तैरता इंसान जब अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है तो फिर हाल क्या है। और अब तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने मुसलमान मुल्कों के वो जहाज बन गए कि फिजाओं में भी आपको किसी क्लब की याद नहीं आएगी, और वहाँ भी आपको गैम्बलिंग की सारी सहूलतें, और पूरे पूरे बेडरूम बन गए हैं अब जहाज़ों के अंदर। एक जहाज दिखाया था लोगों की राल टपकती है, मेरा दिल खून से भर जाता है कि अल्लाह इन जहाज़ों में जाके अब होने क्या वाला है, लेकिन फन है। और जो शिप्स और जो ऐसे जहाज और क्रूज मुस्लिम मुल्कों की, मैं नॉन मुस्लिम्स की तो कभी किसी चीज़ को इतनी अहमियत ही नहीं देती, मैं कहती वो तो और भी कर लें, ठीक है उनके पास और क्या अल्टरनेट है। लेकिन जब दौलत मुसलमानों के पास ज़्यादा होती है तो वो अपने जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के अंदर वो सामान नाफरमानी तैयार कर लेते हैं कि जो अल्लाह के गज़ब को बुलाने वाले हैं। तो शुक्र क्या है कि इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल ना करे। अब आप इसको अपनी हर नेमत पे रख लीजिएगा, इंशाल्लाह बात वाजे हो जाएगी। इसी तरह एक और तारीफ इब्ने अभी दुनिया ने कही, कहते हैं अशुक्र तरकुल मासी, इतना इसे हाईलाइट कर लें बस, अशुक्र तरकुल मासी, बोले मेरे साथ अशुक्र तरकुल मासी। शुक्र नाफरमानियों के तर्क करने का नाम है, बात समझ रहे? अच्छा मसला ये ना कि फिर हम नाफरमानी माने भी, हम माने तो सही है गुनाह। पहले क्या होता था कि लोग मानते थे ये गुनाह, कोई भी काम करते थे, आज लोग कहते कोई नहीं गुनाह, ऐसे ही मौलवियों ने किया। एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बड़ी बड़ी चीजें हराम चीजों को लोगों ने आज कॉन्ट्राडिक्शन का नाम दे दिया। ये ईस्ट का फर्क है, ये वेस्ट का फर्क है, ये फलां है, ये सलफी लोग हैं और ये मुजद्दद हैं। और आज जो हालात दुनिया में है, जो मीडिया ने दीन के नुमाइंदे आपके सामने रखे हैं, वो तो ओवरनाइट आलिम लगते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको और हमारे दीन की हिफाजत करे, रातों रात आलिम बन जाते हैं और वो बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे आकर लोगों के ईमान को बेचते हैं। आसान दीन हमारे पास आओ, हम तुम्हें वो दीन देंगे जिसमें तुम्हें ये एहसास ही खत्म हो जाएगा कि ये गुनाह। देखिए जब बंदा गुनाह करता है और साथ उसको पता होता है ना ये गुनाह, तो गिल्ट आता है, फिर एक दिन आएगा कि छोड़ देगा। लेकिन जो बंदा गुनाह को गुनाह ही ना समझे, क्या वो छोड़ेगा उसको? वो तो फिर अमल करने वालों को कहेगा ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये फंडामेंटलिस्ट, ये फंडोज हैं, ये तालिबान हैं, ये कायदीन हैं, ये फलां हैं, ये तो लोगों को पता नहीं कौन सा 1400 साल पुराना दीन दे रहे हैं। याद रखिए जब बच्चे के मुंह को टेस्ट लग जाता है ना मीठी मीठी चीज़ों का, तो उसको नेचुरल माँ का दूध अच्छा नहीं लगता। आज के दौर का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि दीन की सच्चाई बयान करने वाले लोग, यानी जिनके पास हक था ना, मसरत के साथ कहूंगी कि उनकी जुबानें कड़वी हैं, उनको बात करनी ज्यादा नहीं आती, वो चीख चीख के बात करेंगे या गुस्से में करेंगे या ग्रज में, इल्ला माशाल्लाह, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मैं चंद मिसालों को जहन में रख के बात कर रही हूँ। अब बात सच है, उनके पास हक दीन है, उनके मसले मसाइल बिल्कुल ठीक है, कुरान और सुन्नत को मानते हैं, बट बात पेश करने का तरीका नहीं आता, लोगों के माइंड लेवल को टच नहीं करते, उनका माइंड सेट नहीं मिलता, उनकी पिच बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची बोलेंगे कि दूसरे बच्चों की बात उनकी भूल जाएगी, उनका अंदाज याद रह जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। इसके बरक्स दूसरे लोग जिन्होंने ख्वाहिशों वाला दीन और जिन्होंने अमेंडमेंट्स वाला दीन और वो जिसको कहें डायल्यूटेड वर्जन ऑफ रिलीजन रखे हैं ना, उनकी ज़ुबानें बड़ी मीठी हैं, तो वो अपनी ज़ुबान की मिठास और नरमी और लोच की वजह से लोगों के दिलों में अपनी बात पहुँचाते हैं, चाहे वो गलत है। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये बात कहना कि मैं शुक्र करती हूँ, कैसे गुनाह छोड़ती हूँ, आज के बाद आपको अल्लाह कोई नेमत दे, अल्लाह सबको दे, दी हुई है उसने हमें, बस आंख खोल दे हमारी जिससे हमें नेमतें नजर आ जाए, वरना तो बात नहीं है। तो जब कोई नेमत दे ना, तो आप शुक्र करना चाहती है ना, क्या करें, कोई गुनाह छोड़ें, इस आयत पे अपने लिए अमल लिखें, आज के बाद किसी नेमत के मिलने पर मैंने कोई एक गुनाह जरूर छोड़ना है, कि अल्लाह ने मुझे आज एक और नेमत दे दी, आज के बाद फलां गुनाह छूट गया, आज से फलां आदत छोड़ दूंगी। तो आप देखिए एक दिन में हमें इतनी नेमतें मिलती हैं अल्लाह के हुक्म से कि हमारे गुनाह भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा और हमने चाहा तो। फिर इसी तरह अल्लामा राग़िब है, उन्होंने शुक्र की तारीफ़ ज़रा तवील की है, कहते हैं क्या शुक्र हुआ अलमतला मिन ज़िक्र अलमुनमी अलैहि व शुक्र सलासत अदराब शुक्रुल क़ल्बी शुक्रुल लिसानी शुक्र सायरिल जवारिह। उर्दू में पढ़ के सुनाती हूँ, शुक्र अपने पर इनाम करने वाले के जिक्र से लबरेज होता है। पहली चीज़ क्या है शुक्र में, कि जिसने आपको नेमत दी ना, आप उसका जिक्र करते रहते हैं, तस्करा करते हैं, ये ऐसी ना जैसे कोई आपको खाना खिलाता है तो आप उसका तस्करा करेंगे, उसने मेरे लिए रोटी बनाई, उसने मेरे लिए खाना बनाया, तस्करा करते हैं, पहली चीज़ ये है। फिर शुक्र के तीन पहलू हैं, सबसे पहले जो शुक्र के जज्बे उभरते हैं ना, वो दिल में होते हैं। दिल का शुक्र क्या है, नेमत का तसव्वुर, क्या मतलब, ये सोच लेना कि ये नेमत मेरे किसी फन का, मेरी किसी कारीगरी का, मेरे किसी हुनर का नतीजा नहीं है, बल्कि ये महज मेरे रब का मुझ पर इनाम है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। कुरान में आप पढ़ेंगे सूरत कसस में कारून का एक जुमला नकल किया गया, जब उसको दौलत अल्लाह ने दी, दी अल्लाह ने दी, लेकिन कहता था इन नमा ऊती तुहू अला इल्मी, ये मुझे मेरे इल्म से मिला। और ये आज के दौर में मैंने माँ बाप में से कुछ को फख्र करते देखा है, हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखा है, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो पायलट हैं, अच्छा ये दौलत है, हाँ हाँ मेहनतें बहुत की हैं ना, हमारे बाप ने बहुत मेहनत की। ये जो आज के दौर का एक बहुत ना नजर आने वाला बुत तालीम है ना, उसने भी लोगों को इस एहसास से दूर कर दिया। आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप पायलट बन जाएं, रोटी रिस्क आपको तभी मिलनी है जब अल्लाह ने आपके नसीब में करनी है। आज आप देखिए अंगूठा लगाने वाले सेठ हैं, उनकी दौलत संभलती नहीं है, ना बात करनी आती, ना कोई उनकी हरकत अच्छी, लेकिन पढ़े लिखे बहुत मुहज्जब लोग हैं, वो बेचारे नौकरियों के लिए भाग रहे हैं। तो जो नेमत मिले मानिए ये मेरे रब ने दी। अच्छा शादी हुई, लड़की घर गई, ससुराल में गई, मियाँ बहुत मोहब्बत करने वाले मिल गए, अल्लाह ने दिए ना, कहना मेरी बेटी सुघड़ी बड़ी है, मेरी बेटी हुनरमंदी बहुत है, मेरी बेटी सुघड़ी बहुत है, सलीका शुआरी बड़ी खूबसूरत, देखो कितनी है। अल्लाह की कसम जितनी मर्जी खूबसूरत, जितनी मर्जी सलीका शुआर हो, अगर अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत ना डाले तो कभी उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करेगा। बात समझ गए? तो लिहाजा जरूरत है इस बात की, अपने ऊपर लें। देखिए ये बातें इस वक्त आपकी अपने लिए, सबकी नजरें अपनी किताबों पे या अपने दिल पे होनी चाहिए कि जब मुझे कोई नेमत मिलेगी आज के बाद, तो मैं अपने रब का शुक्र करूंगी, उसकी तारीफ करूं। और यकीन करें असल शाकिर वो बंदा है जो सारा दिन परेशान ही इस बात पे रहता है कि ये अल्लाह ने मुझ जैसे बंदे को दे दी है, ये मुझे नेमत मिल गई है, ये मेरे लिए ये काम हो गया, ये अल्लाह ने मेरे लिए किया, मैं तो कुछ हो नहीं। और ये हकीकी आजजी के साथ आता है। आपके अपने अंदर जब तक बेहतरीन तरीके से आजजी नहीं आती ना, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई मुकाम नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये सारा कुछ है मेरे मालिक, तूने ही दिया, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला का तसव्वुर दिल में आता है। तो यहाँ बैठे बैठे अपने दिल से कहिए, मुझे जो कुछ मिला है ये मेरे रब का कमाल है। सोचिए, अगर आपके उस दुनिया की हर नेमत है, मोहब्बत करने वाले शौहर हैं, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, दिल से कहिए कि अल्लाह ये मेरा कोई गुण नहीं है। मेरे से कितनी अक्लमंद, मेरे से कितनी खूबसूरत औरतें बेचारी ऐसे बैठी हुई हैं, पता नहीं तूने मुझे क्यों दे दिया। ये एहसास आप देखेंगे, ये शुक्र का नुक्ता आगाज होता है। फिर दूसरा दर्जा क्या है, जुबान का शुक्र। फिर जुबान से भी बोलिए, वो इनाम करने वाले की तारीफें करना, और हमारा दीन तो शुरू ही इससे होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ईमान वाले की जुबान सारा दिन तर रहे लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से, दिल के अंदर इसकी गिरे पड़ी हो। जब आप बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी मिठास अपने दिल में महसूस करें, और जब आपकी जुबान पे आए ना अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, मैं अपने मालिक की तारीफ कर रही हूँ, मेरे मालिक ने मुझे ये कुछ दिया है। फिर इसके बाद शुक्र का तीसरा दर्जा शुरू हो जाता है, आज़ा का शुक्र बिल जवारह, सारे आज़ा का शुक्र। और वो क्या है कि उसको नेमत देने वाले की मर्जी से इस्तेमाल करें। आसान सी बात है, जुबान का शुक्र क्या, कि ये जुबान अल्लाह के रास्तों में बोले, अल्लाह का कलाम पढ़े, लोगों को अल्लाह से जोड़े, अल्लाह की तारीफों के गुन गाए। आंखों का शुक्र क्या है, कि इन आंखों से वो चीज़ें देखी दिखाई जाएं, वो रास्ते देखे जाएं, उन रास्तों पे चला जाए जो अल्लाह को पसंद है। कानों का शुक्र क्या है, कानों से वो चीज़ें सुनी सुनाई जाएं जो अल्लाह की पसंद की। बस ये है शुक्र, सीधी सी बात है। कदम किधर चल कर जाएं, कदमों का शुक्र क्या है, हमारे कदम अल्लाह के रास्तों में निकलें, मस्जिदों में जाएं, इल्म सीखने जाएं, इंसानियत की खिदमत के लिए जाएं, इस तरीके से हमारा शुक्र जो है वो पूरा होता है। और आप देखेंगे कि शुक्र जो है ना, ये इंसान के अंदर ऐसे घुलता है, मैं अपनी इमेजिनेशन से आपको बताती हूँ। अब तो लोग शरबत बनाते ही कोई नहीं है, अब तो वो सोडा और फिजी ड्रिंक्स बाहर से आ गए, और जूस भी बाहर की होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग अपने कैरियर के आगाज में थे, तो कोई मेहमान आता था तो उसके लिए शरबत बनता था, ऐसे ही है ना, फिर उसमें चीनी डालते थे, फिर सुर्ख रंग डालते थे, फिर डालते डालते उसका शक्ल रंग बेहतर हो जाता था, तो पता चलता है। मैं जब भी लफ्ज़ शुक्र देखती हूँ ना, तो मेरे जहन में वो रूह अफ़ज़ा शरबत का घोलना आ जाता है। पहले फीका पानी था, चीनी अलग रखी हुई थी, या शरबत ही सही, आप उसमें डालते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, जितना वो डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। शुक्र शक्कर है, ये जुमला मैंने पहले भी बोला हुआ है, और बड़े लोगों को इससे फ़ायदा हुआ कि शुक्र शक्कर है। जिस तरह शक्कर या चीनी कड़वी चाय को मीठा कर देती है, इस तरह शुक्र कड़वी जिंदगी को मीठा करता है। 2009 का जो दौरा कुरान था, उसमें जो दौरा कुरान है उसकी सूरत फातिहा में यही एग्जाम्पल दी हुई है, उसमें ये मिसाल अल्लाह ने दिलवाई थी कि आज हमारी कड़वी जिंदगियां, हमारी दुखी जिंदगियां, इसकी वजह शुक्र की कमी है। चीनी लेना शुरू करते हैं तो चाय मीठी होती है ना, आप अपनी जिंदगी में शुक्र डालना चाहें, शुक्र का रस डालिए, यही घर, यही शौहर, यही बच्चे, यही सास, यही नंद, यही बहू आपको सबसे प्यारे लगेंगे। हम ना शुक्रे होते हैं, हमारे अपने अंदर एक हुनस सा भरा होता है, मैं तो हूं ही बड़ी आला, मुझे क्या मिल गया, ये को मुझे मिलना था, मुझे तो कोई प्रिंस मिलता, बस अंदर से बात चली गई। लेकिन जो ही आप शुक्र भरी निगाह अपनी जिंदगी पर डालेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फिर एक बड़ी खूबसूरत तारीफ इधर आप देखिए, अलामा कासवी की इन्होंने नकल की है, अशुक्रु मबनी अला खमसी कवायद, कहते हैं कि शुक्र पांच बुनियादों पर उस्तवार है। अपने लफ्जों में लिख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। यानी बुनियादें ना, जैसे ये देखिए मेरे सामने जो टेबल रखा हुआ है, इसकी चार टांगे हैं ना, अब अगर इसमें से एक टांग निकाल दूंगी तो टेबल सीधा नहीं रहेगा ना, तो जिस तरह इस मेज की चार टांगे हैं ना, तो शुक्र की पांच टांगे होती हैं। एक टांग भी हटा देंगे ना तो शुक्र गिर जाएगा। वो कौन कौन सी हैं, खुदुश शाकिरी लिल मशकूर, पहली चीज शुक्र करने वाले की मशकूर के लिए ताबेदारी, यानी जिसने नेमत दी है आप उसके ओबीडियंट बन जाएं। अब आप बताएं मुझे, आपको सब कुछ किसने दिया, अल्लाह ने, तो फिर पहली बुनियाद शुक्र की क्या है कि हम अल्लाह ताला के ताबेदार बन जाए। और ताबेदारी क्या होती है? बात मानना, ओबीडियंट होना। हम अपने बच्चों से भी यही चाहते हैं, सच्ची जो बात है। हम अपने सब डिपेंडेंट से और अपने जो हमारे घरों में हमारी खिदमत कर रहे होते हैं लोग, जो हमारे काम कर रहे होते हैं, हम उनसे यही चाहते हैं कि हमारे ताबेदार हो। काम करें ना करें मासी, लेकिन आपके बुलाने पे जी बाजी जरूर के। बेटा कुछ करे ना करे, पर आप बुलाएं तो जी अम्मी जी जरूर के। अल्लाह भी यही चाहते हैं। ये ताबेदारी के जुमले में ही पांच नमाजें हैं। जब अल्लाह के हय अल सला, जी अल्लाह जी आ गई। असला तो खैरो मिनन नौम, जी अल्लाह जी उठ गई। ये है ताबेदारी। एवर रेडी, हर लम्हे हर घड़ी तैयार। कामरान कामरान नारा तो आपने सुना होगा ना। बंदे का अल्लाह के साथ शुक्र का पहला दर्जा, पहली बुनियाद क्या है? जब अल्लाह पुकारे। ये ना कि अच्छा आती हूँ, अच्छा सुन ली है बात, नहीं आज नहीं आ सकती। इसीलिए आपको पता है कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज की जो असल है ना, हमारे खड़ा होना, रुकू, सजदा, ये सानवी चीज है। असल ये जज्बा है कि रात सोती आंख खुलाई अल्लाह ने, उठो नमाज पढ़ो, जी अल्लाह जी। जोहर में खाने के लिए बैठ रहे थे, नहीं नमाज पढ़ो, जी अल्लाह जी। असर के लिए फिर लेट गए, अल्लाह जी। मगरिब पे दिन जा रहा है, आ गई, अल्लाह जी मगरिब पढ़ूंगी। ईशा में सारे दिन की थकी टूटी हूँ, लेकिन अल्लाह जी नमाज पढ़ के सोऊंगी। ये पांच वक्त की ताबेदारियां सिखाता शुक्र। फिर दूसरी चीज देखिए, वह हुब्बुहू लहू, दूसरा दर्जा, दूसरी बुनियाद, कि जिसने नेमत दी उसे मोहब्बत भी की जाए। ये मारी बांधा शुक्र नहीं होता। अब क्या करें, है ना हमारा अल्लाह। किसी नॉन मुस्लिम ने कहा, तुम मुस्लिम्स का गॉड कितना डिमांडिंग है। नऊज़ु बिल्लाह, व्हाई ही ऑलवेज वॉन्ट के पीपल विल प्रेस हिम। अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए ये छोटा मुंह बड़ी बात है ना। अल्लाह से मोहब्बत करना शुक्र की दूसरी बुनियाद है। और ये मोहब्बत जुबान से नहीं सिखाई जाती। मैं तो इस बात की 100% कायल हूं कि मोहब्बत सिखाई नहीं जाती। ये अंदर से उठने वाला जज्बा है, और जब अंदर से उठता है ना, तो आप फिर उस बंदे के आगे खड़े हों, उससे बात करें, उसके बारे में सोचें। एक एक एक्शन आपको बताता है कि उसको आपसे मोहब्बत है। आज तो मोहब्बत के इजहार के लिए एक्सप्रेशंस ही बहुत हैं, फीलिंग्स ही बहुत हैं। आप दिल बना के भेज दें, फूल बना के भेज दें, आप किसी को आई लव यू कह दें, कितना आसान है। 10 लोगों को आई लव यू के कार्ड आप एक ही डाल देते हैं, और सब कोई कहते हैं जस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू कहते हैं ना। लेकिन असल मोहब्बत दिल से उठती है। आप फील करते हैं, देखिए मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए आपको किसी दूसरे से पूछना बताना नहीं पड़ता। यह आपके अपने अंदर से उठती है। आपका जो बच्चा दिल से आपसे प्यार करता है ना, आपको पता होगा, मैं सच कह रही हूं, सारे ही अच्छे होते हैं, पर एक बच्चा ऐसा है जो आपके पीछे मामा आते जाते बाहें लगाएगा, गला से लटकेगा, प्यार करेगा, मामा के पास बैठा हुआ है, मामा गई हुई है तो वो उदास हो रहे, मामा आप कब आएंगी। दूसरे बच्चे को परवाह ही नहीं होती। अब प्यार दोनों ही करते हैं, पर आपको एक का प्यार दिखता है। तो जो बेखुदी वाला प्यार होता है ना, जो किसी को सिखाया पढ़ाया जा सकता ही नहीं है, वल्लाही आप अपने बच्चों के दिल में अपना प्यार नहीं डाल सकती। आप किसी उस शागिर्द के दिल में कोई उस्ताद अपना प्यार नहीं डाल सकता, कोई बाप अपने बेटे के दिल में नहीं डाल सकता, लेकिन शुक्र का जज्बा अल्लाह का प्यार दिल में डालता है। और यकीन करें, ये पानी, इसको जरा खड़े होके बैठे पीने से पहले देखें ये क्या है। ये गीला पानी, इसका ना रंग, ना इसका जायका, ना इसका कुछ भी है, लेकिन ये मैं गले में डालती हूँ तो मेरे लिए गले की नरमी, तरवाहट किसका सबब बनता है? ये किसने दिया? ये ग्लास किसने दिया? ये अल्लाह ताला ने पीने के बाद जो मैंने निगलना है, निगलने की ताकत किसने दी? फिर ये मेरे जिस्म को आसूदगी देता है, ये किसने दिया? यही जज्बे हैं इबादत। यही या का नाबुद व या का नस्तईन। ईमान वाला सारा दिन मुसल्ला डाल के नहीं बैठता, और ना बैठ सकता है, और ना मतलूब है। हमने दीन को चंद रिचुअल में रखा हुआ है, और उठते बैठते लोगों को सुनाते हैं, दुआएं भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, ये भी करती हूँ, और दिल में 100 शिकवे हैं अल्लाह से। नहीं, आप शुक्र भरे दिल के साथ सुबह का आगाज करते हैं, ये आपकी इबादत है। लोग कहते हैं, लो जी उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहिन नुशूर। पहला सबक सुबह उठते ही हमें ये पढ़ाया जाता है। सारी तारीफें उस जात की हैं जिसने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। किसी ने कहा, लो अभी लिया क्या अल्लाह से, शुक्र किस बात का करते हो? तो शुक्र इस बात का कि उसने जिंदा उठाया। कहीं नींद में नहीं सो जाते, उठ के बैठना चाहा तो कमर दोहरी हो गई, पाँव चप्पल में डाला तो उंगलियां मुड़ने लगी, उठ के चले तो पाँव चल पड़े, टॉयलेट में गए कमोड़ पे बैठना चाहा तो कमर ने साथ दिया, हाथ पकड़ा ब्रश करने के लिए दांतों पे हिलाया हाथ हिलने लगा। किस किस बात का शुक्र आप नहीं करते? सिर्फ आंख खुल के रखे। और आज मैं आप सबको साथ साथ पेरेंटिंग की एक टिप देती जाऊं कि अपने बच्चों को अगर हम अल्लाह का शुक्रगुजार बना देंगे ना, अल्लाह की कसम वो हमारे शुक्रगुजार बनेंगे। ये पहला सबक है लुकमान की नसीहतों का, अनिश्कुर ली वली वाली दईक। आप सूरह लुकमान का दूसरा रुकू खोल लें, बच्चों की तरबियत के बुनियादी नुक्ते वहां इकट्ठे किए हुए। सबसे पहली चीज शुक्रगुजारी सिखाएं। अल्लाह का शुक्रगुजार होंगे खुद ही नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे खुद ही उसकी नाफरमानी से बचेंगे। माएं पीछे पड़ी रहती है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ये नहीं सिखाती क्यों पढ़ो। बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चों को जब बात समझ आ गई तो उन्होंने कहा जैसे आंटी आपने बताया है, मामा तो ऐसे नहीं बताती। मामा तो अगर ये कहती हैं नमाज पढ़ो, पर ये तो कभी नहीं कहा कि ये तो अल्लाह को थैंक यू बोल रहे हैं, ये तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आप अपने और अपने बच्चों के लिए ये पांच बुनियादें लिख लें। अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करनी है।